9 जनवरी को 2013 बुधवार के दिन सब लोग नजफगढ़ में इकट्ठा हो गए। मैं आप सबका बहुत ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यहां पर आने का मौका दिया। और जैसे मुझे कहा गया है उस प्रकार से आज का श्लोक दूसरा अध्याय का 24 वर्ष अच्छेद्योयम् दोयम् दायोयम् क्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम् सनातनः। ये आत्मा अखंडित है तथा अघुलनशील है, इसे तो न जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सार रहने वाला है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवरुद्ध करना कठिन है क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के रूप में साथ में मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान की तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगता ये शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की तरह समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वो ठीक नहीं है क्योंकि यहां कहा गया है कि अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जल हो तो सर्वगत ये शब्द निरर्थक बन जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद। हरे का नाम है गीता का सार। इसमें हमारे तुम्हारे स्वभाव का वर्णन किया गया है, साई भाव कह सकते हो, जो हमारा मूल प्रवृत्ति है या मूल स्वरूप है जिसका वर्णन यहां पर दिया गया है। भगवान जो है वो पूर्ण सच्चिदानंद आत्मा है और हम सब लोग उनके अणु हैं। उनका अणु होने के नाते हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन हम अणु सच्चिदानंद हैं, वे विभू सच्चिदानंद हैं। अनंत मात्रा में सच्चिदानंद का जो स्वरूप है वो उनके अंदर विराजमान है और उनके अंश के रूप में अणु मात्र में हम सत और चित्त और आनंद का स्वरूप है। लेकिन ये जीव दुर्भाग्यवश शरीर में फंसा हुआ है। जो शरीर सत चित आनंद के बिल्कुल उल्टे स्वभाव है। अगर आत्मा सत है चिरंतन है तो शरीर मरने वाला है, मरते हैं। अगर आत्मा पूर्ण ज्ञान से संपूर्ण है, संपृक्त है, तो शरीर जो है वो अज्ञान का भंडार है। शरीर की सभी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। अभी इस दीवार के पीछे क्या चल रहा है दिखाई नहीं पड़ता है, अमेरिका में हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है सुना नहीं पड़ता है। तो हमारी इंद्रियां सीमित होने की वजह से हमारा ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है वो भी सीमित है, और आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप है वो परिपूर्ण है। और साथ साथ हमारा जो हमारे जो स्वभाव है वो आनंदमय भैसा, सब जगह आनंद को खोजते रहते हैं, और शरीर जो है वो दुखालय है, दुख का स्रोत है। आप देख सकते हैं कि एकदम उल्टे स्वभाव की आत्मा जो है वो उससे विपरीत प्रकार के शरीर में फंसी हुई है। इसलिए सच्चिदानंद होते हुए भी वो मर्त्य अज्ञानी और दुखमय दिखाई पड़ती है। जीवन जो है वो मर्त्य मतलब मरने वाला है, समाप्त होने वाला है, अज्ञान से भरा हुआ है और दुख भरा भी दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि शरीर जो है वो मर्त्य केवल नहीं है, वो मृत है। मर्त्य का मतलब क्या होता है? मरने वाला है। मृत का मतलब है ऑलरेडी डेड। क्या प्रमाण है इसका? अगर हम इसमें से निकल जाएं तो क्या होता है? आधा हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है, निश्चेतन हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है। जब तक हम उसमें हैं वो चलता बोलता खेलता हंसता काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो सोच सकते हैं कि मृत जो भौतिक जगत का एक कॉम्बिनेशन है, हा? डेड मैटर बोलते हैं उसको। एक मृत वस्तु को इतनी सचेतनता आत्मा दे सकता है तो आत्मा सचेतन कितनी होगी आप सोच सकते हैं? इस मृत शरीर के अंदर इस अपने स्वभाव के पूर्णता विरुद्ध स्वभाव के शरीर में फंसने के बाद भी इतनी चेतना है उसके अंदर कि वो इतने शरीर को पूरा भिगला देती, कार्य कराने में मजबूत करती थी। इतना साल जीती उसके अंदर, उतना साल तक वो मृत शरीर भी चलता फिरता सचेतन नजर आता है। तो अगर ये आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाए और उस पर कोई विपरीत या विरुद्ध आवरण ना हो, रोकने वाला या उसको निष्प्रभ करने वाला, तो अगर पूर्णतः मुक्त अवस्था में ये आत्मा कितनी प्रभावी होगी, कितनी शक्तिशाली होगी, इसका हमको अंदाज लगा सकते हैं। इतनी चेतना अमृत वस्तु को ये आत्मा दे सकती है, और वो भी इतनी शक्तिशाली आत्मा जो है वो भी केवल अणु मात्र है। केश के बालों का जो अग्र है उसका 10,000वां हिस्सा जो है वैसा उसका वर्णन किया गया है। केशाग्र दश सहस्त्र भाग से वेदों में दिया है, पुराणों में दिया है, गीता में भी दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। और आत्मा के पास अणु मात्र इतना अणु जो माइक्रोस्कोप भी उसको देख नहीं सकता है। केवल हम हमारे शरीर में जो चेतना है इसके द्वारा समझ सकते हैं कि इसमें आत्मा है। आत्मा का प्रमाण क्या है? चेतना। जहां चेतना है वहां पर आत्मा है, ऐसा हम अनुमान निकाल सकते हैं। आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कर सकते, आत्मा केवल शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से समझ सकते हैं। इतनी वो सूक्ष्म है और वो दिव्य वस्तु है, स्पिरिचुअल सब्सटेंस। शरीर जो है जड़ वस्तु है, आत्मा दिव्य वस्तु है, और वो दिव्य वस्तु जो है वो परम दिव्य भगवान का अंश है। देखिए हमने वर्णन किया है कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता है। हम शरीर का अंत संस्कार करते हैं, दहन संस्कार करते हैं, आत्मा नष्ट नहीं होती है। आत्मा को तो अग्नि छू भी सकती है, और आत्मा को जल जो है वो गीला नहीं कर सकती। शरीर को समुद्र थमा दी जाए तो भी आत्मा गीली नहीं हो सकती। आत्मा निकल जाती है। आत्मा को हम काट नहीं सकते, नहीं नम चिंतन की शस्त्राणि। आत्मा इतनी अद्भुत वस्तु है, आप सोचना चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है, और वो और कोई नहीं, वो हम हैं और आप हैं। हु आर वी, ये पहचानने के लिए तो मनुष्य जीवन दिया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, समझने के लिए मनुष्य जीवन दिया है। इतना बड़ा मनुष्य जीवन, इतना महान और दिव्य व्यवस्था भगवान ने की क्यों की है, इस आत्मा को समझने के लिए कि हम कौन है, क्या हमारा स्वरूप है, कहां से आए हैं, किसका अंश है, कहां जाना है, कहां से कहां हमारा स्थायी स्वरूप निवास है, ये समझने के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया है। अगर केवल आहार निद्रा और सुरक्षा और सेक्स केवल इतना ही करने के लिए जीवन दिया होता तो चींटी को प्राप्त जितना दिमाग है उतना भी काफी होता हमारे लिए ना, क्योंकि चींटी भी आहार निद्रा भय महसूस करती रहती है। मच्छर भी करता है, मच्छर भी खाता है, मच्छर भी सोता है, मच्छर भी सेक्स करता है, मच्छरों को जन्म देता है, मच्छर भी अपनी रक्षा करता है, संकट के समय यहां भागता है छोटा दवाई मारने पर। उसके अंदर भी दिमाग में पूरा सॉफ्टवेयर फिट है आहार निद्रा भय महसूस का। तो आहार निद्रा भय मजुन के लिए खटमल का दिमाग भी काफी है, मच्छर का भी काफी है, मच्छर के लिए चींटी का भी काफी है, हाथी का भी काफी है, शेर का भी काफी है। आप किसी भी जानवर के देखिए उसके अंदर वो आहार निद्रा भय मजुन का सॉफ्टवेयर फिट है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, उनको अपने आप करते रहते, उल्टा हमसे अच्छा करते क्योंकि हम हाथी इतना नहीं खा सकते, हम भालू भी इतना सो नहीं सकते, कबूतर और शोर कितना सेक्स नहीं कर सकते, और निहत्थे शेर का आप सामना नहीं कर सकते। कर सकते कोई यहां पर? कोई है क्या? कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब आहार निद्रा भय मैथुन हमसे अच्छा करने की जो शक्ति है वो सभी कीटकों में, प्राणियों में, पंछियों में भगवान ने दे रखी है। कबूतर क्या चीज है? कबूतर 64 बार दिन में सेक्स कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है। तो फिर हमको इतना बड़ा दिमाग क्यों दिया है? अगर आहार निद्रा भय मैथुन हमसे भी अच्छा करने का सॉफ्टवेयर चींटी और भालू और हाथी और इसके दिमाग में रखा हुआ है तो हमारा हमको दिमाग क्यों दिया है इतना? भगवान ने वाचा भी दिया है, हम कविता कर सकते हैं, गा सकते हैं, नाच कर सकते हैं, बढ़िया व्यंजन बना के खा सकते हैं, अपने आप को ड्रेस कर सकते हैं, भालू का स्टाइल बना सकते हैं, क्या परदेश जा सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। ये दिमाग इसलिए दिया है कि हम अपने आप को समझे कि हम कौन हैं। चंद्र पर, चंद्रमा के ऊपर कौन से प्रकार की मट्टी है ये खोलने के लिए नहीं दिया दिमाग, लेकिन आदमी ढूंढ रहा है चंद्रमा में कौन सी मट्टी है, उसको जाके म्यूजियम में रखते, करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं उसके लिए। क्यों? एक थोड़ी मिट्टी लाने के लिए। तो वहां पर जो है वो इन आंखों से दिखता भी नहीं हमको, इसलिए बोलते हैं वहां पर जीव सृष्टि है ही नहीं, क्योंकि ये जो हमारा स्वभाव नहीं है उसमें हमारा दिमाग खर्च कर रहे, इसलिए हमको उसको यश प्राप्ति नहीं होती। तो कोई कल्पना चावला के मर जाती है अंतराल में, है ना? क्या करें? जो हमारा साई भाव नहीं है वहां पर हम लोग खोज कर रहे हैं, हाथ पांव हम भिजा रहे हैं। इतना बड़ा दिमाग दिया है वो भगवान को जानने के लिए और अपने स्वाप को जानने के लिए, सबसे पहले अपने आप को जानने के लिए, और हम कौन है ये संबंध में फिर भगवान का संबंध आता है तो उनको जानने के लिए। इतना बड़ा शरीर दिया है, इतना बड़ा दिमाग दिया है। हम जब मेडिकल की पढ़ाई करते थे ना तो आप जानते हैं बड़ी बड़ी बहुत किताबें होती है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें होती है, एक विषय के ऐसे उनको 15-16 विषय होते थे, और लगता था कि कितना दिमाग लगता होगा इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद में हमारे ध्यान में आया कि मतलब जब हम कृष्ण भक्ति में जब आने लगे तो हमको ध्यान में आया कि जितना दिमाग शास्त्रों को समझने के लिए आवश्यक है उससे कई गुना कम दिमाग लगता है मेडिकल पढ़ाई करने के लिए। मतलब भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में जानकारी करने के लिए जितना दिमाग लगता है वो दिमाग बहुत ज्यादा जरूरी है जितना दिमाग लगता नहीं है मेडिकल की या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि तो विषय जो है भौतिक नहीं है, जड़ विषय नहीं है, दिव्य विषय है, और इसी को समझने के लिए हमारा जीवन है। उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई पीएचडी हो, अगर डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई आईटी ऑफिसर हो, कोई और कुछ बढ़िया पढ़ाई किया हो, लॉयर हो, तभी ये समझ सकता है। ऐसा भी नहीं है। जो व्यक्ति मुमुक्षु है, जिसको जानकारी करने की इच्छा हो गई है कि मैं कौन हूं, वो ये जानकारी कर सकता है, क्योंकि उसमें मनुष्य का दिमाग है, चाहे उसका आईक्यू 80 हो या 150 हो। लेकिन उसको ये जानकारी करने का जो फॉर्मूला है वो दिमाग में फिट करके रखा है। इसलिए हमारे इतिहास में देखेंगे ना, अंगूठ छाप भी परमहंस भक्त थे और प्रभुपाद जी गुरु जैसे, हाँ, जिसकी जितना ज्ञान 100 पीएचडी के बराबर हो सकता है, इतना ज्ञान था उनको, चलता फिरता शास्त्र थे वो। ऐसे लोग भी हैं और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गौरकिशोर बाबा जी महाराज अंगूठा छापते हो, उनको कुछ लिखने को नहीं आता, लेकिन वो उनके गुरु थे। ये चलता फिरता शास्त्र जो था उनके शरण में आया दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि हमारे बाहरी ज्ञान के ऊपर इसका कोई मायना नहीं होता है। कितना हम पढ़े लिखे हैं उस पर ये चीज निर्भर नहीं होती। ये निर्भर होती है सिंसियर डिजायर, प्रामाणिक इच्छा के ऊपर। कितनी नेक हमारी इच्छा है भगवान को समझने की, अपने आप को समझने की, इस पर निर्भर रहता है। तो इसलिए अगर हम अपने आप को मनुष्य कहना चाहते हैं और मनुष्य कहने में गर्व करते हैं, फिर हम जानवर नहीं है, या किसी को जानवर बोलते हैं तो गाली हो जाती है, जानवर है, मतलब हम जानवर को निचला मानते हैं ना, इसलिए हम गाली देते हैं और अपने आप को मनुष्य मानते हैं। लेकिन तब तक हम मनुष्य नहीं अपने आप को कहला सकते, मैं भी और आप भी नहीं कह सकते, जब तक हम स्वयं कौन है ये जानने के मार्ग में अपने आप को स्थिर नहीं करेंगे, तब तक हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। वी आर नॉट फिट टू बी कॉल्ड एज ह्यूमन बींग्स। मनुष्यता हमारी तब शुरू होती है जब हम कौन है ये जानने के मार्ग में अपने आप को रखते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए मुझे, मेरा स्वभाव क्या है, भगवान कौन है, मेरा उनका संबंध क्या है और वो संबंध साबित कैसे करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब दुख क्यों हो रहा है, मैं क्यों तड़प रहा हूं, यहां पर जो सोचता हूं मुझे क्यों प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, ये सब किस लिए बनाया गया है। ये जब प्रश्न होते हैं तो मनुष्यता, मनुष्यत्व जो है उसका आरंभ होता है, वहां से हमारा मनुष्य होना आरंभ होता है। तब तक हम केवल दो पैर के जानवर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत में लिखा है द्विपद पशु, केवल दो पैरों पे मनुष्य का दिमाग लेकर चलने वाले पशु है। क्योंकि पशु जब तक है जब तक हम केवल आहार, केवल निद्रा, केवल सेक्स और केवल सुरक्षा के लिए काम करते रहते हैं। गौर से देखेंगे हम सब लोग यही करते रहते हैं, या तो पैसा कमाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, पेट भरने के लिए परिवार का हमारा, फिर आराम करने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए व्यवस्था करते हैं, फिर प्रजा निर्माण करने के लिए, सेक्स करने के लिए इतना सारा विचार करते रहते हैं, इतनी योजना बनाते रहते हैं, और कोई संकट आया तो उसकी ताला लगाते हैं, कोई बंदूक रखता है, कोई तलवार रखता है, कोई चाकू रखता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड रखता है, अपने अपने तरीके हैं। शेर के पास नाखून है और जंप करने की शक्ति है, और आपके पास बंदूक है। प्रिंसिपल वही है, तत्व वही है कि रक्षा करना है अपने आप की। सब अपने अपने तरीके से करते रहते हैं, लेकिन जब तक हम केवल उसमें उलझे रहते हैं तब तक मनुष्य होने पर भी हम पशु हैं। और जब इसके ऊपर उठते हैं, और ये जो भी प्रश्न बताए ना, 50 प्रश्न बताए, वो उसका उत्तर ढूंढने के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो हमारा मनुष्य होना आरंभ होता है। और इसके बाद में हमको भक्त बनना है, बहुत दूर की बात है। भक्त तो बड़ी ऊंची पदवी है। भक्त वो है जो स्वयं को समझ चुका है, भगवान को कुछ कुछ समझ चुका है, लेकिन स्वयं को भगवान को जोड़ने की प्रक्रिया में स्थिर हो चुका है, डेडिकेटेड, एकदम समर्पित है उस प्रक्रिया के लिए, वो भक्त है। और एक भक्ति की अलग व्याख्या है कि जो भगवान से विभक्त नहीं है वो भक्त है। हम लोग कहते हैं डिवोटी, नॉन डिवोटी ऐसा बोलते हैं ना, वो भक्त नहीं है। लेकिन हम लोग, हम कहां भक्त है, अगर हम भगवान से अभिन्न है, भगवान से विभक्त नहीं है, तो हम भक्त हैं। और भक्त की व्याख्या क्या है कि जो भगवान का नाम पुकारता है। दूसरी व्याख्या क्या है कि वो जब भी कहीं भी जाता है तो उसको देखकर दूसरों को भगवान को भगवान का नाम लेने की प्रेरणा होती है। ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जिसने जिसके होने से केवल दूसरों को भगवान नाम लेने की स्फूर्ति होती है वो भक्त है। तो ये बड़ी ऊंची व्याख्या है। हाँ, अपने आप को भक्त समझना एक अहंकार हो सकता है, झूठा अहंकार। और जो सच्चा भक्त होता है वो अपने आप को भक्त को मानता ही नहीं, इसका और एक लक्षण है। और जो भक्त नहीं है वो अपने आप को भक्त मानता है। एग्जैक्टली उल्टा है, क्योंकि ये दिव्य विषय है, कोई भौतिक विषय नहीं है। दिव्य विषय में जो भौतिक विषय में हम सोचते हैं उसके पूरा विपरीत व्याख्या होती है। सबसे बड़ा होता है भौतिक जगत में वो सबसे बड़ा अहंकार होता है, और भक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे नम्र होता है। एकदम उल्टा होता है ना। तो ऐसी भक्ति की भक्ति का तरीका है, पद्धति है, बिल्कुल शरीर के या इस दुनिया के या इस लौकिक जगत के स्वभाव के अंदर विपरीत होता है उसका स्वभाव, और कार्य भी उल्टे होते हैं। बोले जो भौतिक जगत में रहता है उसको भौतिक जगत के लोगों की वस्तुओं की बहुत आसक्ति रहती है, और जो भक्त है उसको फिर विरक्ति होती है, इसको रुचि रहती है। तो सब लोग बड़े चाव से उसका भोग लेते रहते हैं, भक्त को उसमें रुचि नहीं रहती। और जिनको बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, भगवान, अध्यात्म, परमार्थ, उसके अंदर भक्त को बहुत रुचि रहती है। मतलब कड़ा आदमी होने पर भी वो भगवान के उसके बड़ा एकदम उत्साह रहता है उसको। तो दुनिया सोती है तो ये गत्ते रहता है, तो दुनिया गत्ती है तो ये सोते रहता है। ऐसा है उसकी पूरी पूरी उल्टी व्याख्या कंप्लीट। और ये जो वस्तु है इसको भगवान सबसे पहले गीता में समझाने का प्रयास है। सोचो आप, सबसे पहला जब अर्जुन ने अपना मुंह बंद कर दिया और जब भगवान ने मुंह खोला तो सबसे पहले उनको आत्मा की व्याख्या सिखाना चालू किया। इसका मतलब क्या होता है कि अपने आप की स्वभाव को समझना ये आध्यात्मिक जीवन की पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये इतनी दिव्य इतनी सुंदर वस्तु है, हम स्वयं इसको समझना एक दूसरे से भगवान को समझने जैसा ही है। जैसे हम समुद्र का जल लेके आएंगे एक लोटा में और उसका अभ्यास कर रहे हैं तो समुद्र को समझने जैसा ही है वो, क्योंकि उस जल की जो गुणधर्म है वो सभी गुणधर्म समुद्र का है। कुछ गुणधर्म अलग है लेकिन क्वालिटी में वो एक ही है। तो अपने आप को समझना ही भगवान को समझने जैसा ही है। और अपने आप को समझने की प्रक्रिया जो है उसको भक्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं भक्ति? क्योंकि भक्ति से बड़ी आसानी से हमको समझ में आता है। बाकी योग और बाकी जो प्रक्रिया है वो बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। जन्म जन्मांतर तक उसमें ही तड़पते रहेंगे, आदमी को समझ में नहीं आएगा कौन है हम। इतनी टेढ़ा मेढ़ा मार गया पूरा, कई जन्मों से चलते रहता है, फिर भी गारंटी नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा। लेकिन भक्ति की प्रक्रिया ऐसे है कि थोड़े समय में या इंस्टेंटली हम अपने आप को पहचान सकते हैं और उस स्तर पर जीना भी आरंभ कर सकते हैं। अरे पहली बात तो समझ जाए कि हम कौन है, उसके बाद में आप उस स्तर पर जीना आरंभ करेंगे। समझो प्राइम मिनिस्टर का लड़का है, वो बचपन में खो गया था समझो, और अभी वो रस्ते पर मेट्रो के स्टेशन में बूट पॉलिश कर रहा है। तो अभी वो क्या समझ लगे बूट पॉलिश कर रहा हूं, उधर गली की झोपड़ी में रहता हूं, रोज सूखी रोटी खाता हूं, कभी वड़ा पाव खाता हूं, फिर दोपहर आता हूं स्टेशन पे पॉलिश करने के लिए। लेकिन उसको किसी ने बताया आके, अरे तू तो प्रधानमंत्री का लड़का है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, अरे मैं प्रधानमंत्री का लड़का कैसे हो सकता है। तो उसको यकीन दिलाया जाएगा कि नहीं ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और अभी ये प्रूव हो चुका है कि तुम प्रधानमंत्री के पुत्र हो। तो क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? बूट पॉलिश करना बंद कर देगा सबसे पहले। और फिर तुरंत बड़ी लंबी गाड़ी आएगी मर्सिडीज, उसमें बैठ जाएगा, उसी भी अपने घर, मां के घर में जाएगा, पिताजी के घर में जाएगा, बड़े मेज पर बैठकर 56 भोग खाएगा। क्या इसमें उदाहरण में क्या आपने समझना है कि जो वो नहीं था वो उसके ऊपर जो कार्य कर रहा था वो प्रधानमंत्री का लड़का था, वो बड़े सरल नहीं था वो, लेकिन जब तक उसको जानकारी नहीं थी तब तक वो बहुत बड़े सरल था। लेकिन जब उसको समझ में आया कि वो कौन है, उसने वो कार्य पहले बंद कर दिया जो वो नहीं था और तुरंत वो कार्य करना शुरू कर दिया जो वो है, प्रधानमंत्री का लड़का, तो उसके जूते बदले हो जाएंगे, उसका ड्रेस बदले हो जाएगा, उसकी हेयर स्टाइल बदली हो जाएगी, उसका तेल बदले हो जाएगा, उसका साबुन बदले हो जाएगा, उसका बिस्तर बदले हो जाएगा, तो चलने की ढंग बोलने का ढंग बदले हो जाएगा, हाँ उसके हाथ में औजार आ जाएंगे बहुत कीमती वाले, आगे मुझे नौकर डालेंगे, उसका तरीका अलग हो जाएगा। आज तक तो गरीब आदमी जब तरह ले रहा था वो, उसके बाद लोगों को ऑर्डर करेगा, ये लेके आओ वो लेके आओ, कपड़ा किधर है इसलिए नहीं किया, मतलब अभी वो उस स्तर पे कार्य करने लगेगा जो वो एक्चुअली है। उसी तरह से जब तक आत्मा हमको पता नहीं कि हम आत्मा है और भगवान का अंश है पता नहीं है, तब तक हम इंद्रिय भोगों के पीछे भागते रहेंगे। हाँ, नर मादी को देखेगा, मादी नर को देखेगी और क्या खाने को मिल रहा है उस पर मेहनत करेगा, दिन भर रक्षा करेगा, कोई संकट में आने आने पर भी अपनी सो जाएगा, जब थक जाएगा तो जब पता चलेगा कि भगवान का अंश सच्चिदानंद हूं तो उसके कार्य बदल जाएंगे तुरंत ही, तुरंत कार्य बदल जाएंगे, तुरंत वो अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएगा। ऋषिकेश भक्ति रूपम, जो हमारे इंद्रिय है अब तक भोग के पीछे भाग रहे थे, तुरंत वो भगवान की सेवा में चले जाएंगे जो इंद्रियों का स्वामी है। तो ये कार्य जो है जो हम अभी कर रहे हैं और जानने के बाद में करते हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जानने के पहले जो कार्य करते हैं वो हमको अधोगति की ओर ले जाते हैं और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जनरा शयनम ऐसे चक्र में फंसा देते हैं। बार बार माता के गर्भ में जाने का चक्र जो है उसमें वो कार्य फंसा देते हैं हमको। लेकिन जब जानकारी होती है कि हम कौन है और फिर हम जब भगवान के सामने रखते हैं तो वही कार्य जो है हमको भगवान की ओर चिरंतन धाम की ओर ले जाते हैं। और आपको जानना जरूरी यह है कि वास्तविक रूप में ज्यादा कार्य में फर्क नहीं पड़ता है, भक्त बनने के पहले भी भोजन करना ही है, भक्त बनने के बाद भी भोजन करना है। तो फिर आपने बोला अंतर किधर है, इसमें अंतर बहुत अंतर है, बोला आपने अंतर है नहीं इसके अंदर, कैसे अंतर है, अंतर नहीं है क्योंकि भोजन करना ही है, खाना कुछ है ही, अंतर कैसे है कि पहले हम अपने लिए खाते थे, अभी भगवान के लिए भोग बनाकर उनका प्रसाद के रूप में खाते, पहले भी धन कमाते थे लेकिन अपने लिए केवल प्लान करते थे क्या करना है, अभी कर रहे हैं धन अर्जन कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान की सेवा में परिवार को परवरिश दे रहे हैं। जैसे अर्जुन पहले भी युद्ध करने वाला था, मेरी पत्नी का बदला ले लूंगा, जो वनवास में जगह उसका बदला लूंगा, जो मेरा हक छीन रहे उसको हक मैं जीत कर ले लूंगा, उसका अपना एजेंडा था कि मैं किस लिए लड़ रहा हूं। गीता सुनने के बाद में क्या अंतर हुआ उसके अंदर, उसने वही धनुष उठाया, वही बाण उठाए और वही किया जो पहले करने वाला था, लेकिन पहले वो खुद के लिए कर रहा था, बाद में वो भगवान के लिए कर रहा था। ये जमीन आसमान का अंतर है। हेतु क्या है, हेतु उद्देश्य क्या है हमारा, वो उद्देश्य जो है उसको पूरा बदल गया। तो जैसे हम समझ जाता है कि हम कौन है और हमारा क्या स्वरूप है, हमारा कर्तव्य क्या है, तुरंत हमारे कार्य बदलते नहीं है, हमारा कार्य करने का हेतु बदल जाता है। हम घर में रह रहे हैं, ये हमारा नाम लिखा है, बाहर बोर्ड लगाया है कि भाई ये इसका फलाने का घर है, नंबर 13 का घर इसका है, लेकिन जब वो मालिक उसके घर पे आता है तुरंत दंडवत करता है भगवान को, वो कहता है मालिक आपको, नाम मेरा है लेकिन असली मालिक तो आप, मैं आपका सेवक, जाते वक्त दंडवत करता है, आने के बाद दंडवत करता है और रहता भी उसी है। हाँ क्या भजन है वो, तुम्हें तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, आपके घर में रहता हूं मैं, ऐसे घर का मालिक बोल रहा है जिसके नाम पे एग्रीमेंट है ना, वो क्या बोलता है कि तुम्हारे घर में रह रहा हूं, आप मेरे मालिक, मतलब वही उसी घर में रह रहा हूं, उसी समय सो रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति क्या है अभी कि मैं आपके घर में रह रहा हूं, पहले क्या था ये मेरा घर है, भगवान को ड्रॉवर में रखो, सुबह उठ के ड्रॉवर से निकालो, अगरबत्ती घुमाओ, बंद कर दो, बस ज्यादा मेहनत नहीं करने का उसके ऊपर, और बजट भी इतना नहीं, एक अगरबत्ती बस दिन में, कभी कभी वो जलाओ उसे और बुझा दो, कल दोबारा जलानी हो। ऐसे करते हैं लोग, बहुत लोग करते हैं बजटिंग। लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं करते हो, उसके बाद में भगवान को ड्रॉवर से निकालकर घर में जो प्रधान स्थान है सबको दिखाई पड़ेगा, मेन घर का स्थान जो है वहां रखेगा, सेंट्रल प्लेस में रखेगा, केंद्र स्थान में रखेगा और उस प्रकार से कार्य करेगा, अपने जीवन को भी वैसे चलाएगा। ये जो विधि है इतनी सुंदर विधि है कि इससे हम अपने आप को पहचान सकेंगे हम कौन है। और आप सबको बताता हूं मैं कि हम लोग बड़ी दिव्य चीज है, हम सब लोग अभी आपको बता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी ना उस हीरे की तरह है जिसमें गाय ने अपना गोबर डाल दिया है, पूरा ढक गया वो, जब तक है वहां से गोबर दिखा है, गोबर को हटाएंगे ना साफ करेंगे तो हीरा दिखेगा अंदर, आप खाले कवर हो चुका है। तो जब तक गोबर को नहीं हटाएंगे तब तक जानेंगे नहीं अंदर क्या है उसके। उस तरह से अपने आप के अंदर जो शरीर की चेतना है, आपके अंदर शरीर भावना देह भावना जो है, जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक हम आत्मा ये समझ में नहीं आएगा हमको। इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम पुकारते हैं तो तुरंत जो जैसे हृदय पर जो गोबर पड़ा हुआ है वो साफ हो जाता है, वैसे ही आत्मा के ऊपर जो अनेक प्रकार के लेयर्स कोष पड़े हुए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और आत्मा का प्रकाश जो है वो नजर आता है तुरंत ही। और प्रकाश बड़ा दिव्य होता है, आनंददायी होता है, जो व्यक्ति इस चीज को समझता है वो तुरंत आनंदी हो जाता है। सबसे बड़ा लक्षण तो आनंद का लक्षण यही है, उसका खुशी का लक्षण जो है कि जैसे ही हम नाम पुकारते हैं तुरंत व्यक्ति को आनंद का अनुभव होता है। ऐसे नहीं कि भाई यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान उसके बाद जरा जरा सा शांति का अनुभव होगा, फिर धारणा लगाओगे प्रत्याहार करोगे थोड़ा थोड़ा शांति बढ़ेगी और थोड़ा थोड़ा समाधि के अंदर थोड़ा थोड़ा आनंद का अनुभव होगा और ये समाधि बहुत जन्मों तक करनी पड़ेगी फिर बाद में थोड़ा थोड़ा प्रेम का अनुभव होगा। ऐसा नहीं है, इंस्टेंट इंस्टेंट जब उच्चारण करेंगे प्रेम से एकाग्रता से तुरंत ही आपको उस आनंद का अनुभव होगा, थोड़ा सा क्यों न हो तुरंत होगा लेकिन तत्क्षण। और उसी आनंद के अनुभव से वो जीव जो है आगे बढ़ता रहेगा और नाम लेगा और नाम लेगा और पुकारेगा और पुकारेगा और शुद्ध होगा तो और शुद्धि से पुकारेगा तो और आनंद का अनुभव होगा, फिर प्रसाद पाएगा, फिर ठाकुर जी के दर्शन करेगा, फिर उनकी सेवा करेगा, फिर उनके धाम में जाएगा, फिर कथा सुनेगा उनकी, हाँ उनके भक्तों की सेवा करेगा और शुद्ध हो जाएगा और आनंद का अनुभव करेगा। फिर संकट उसके जीवन में आएंगे, कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, तब भी ये करता रहेगा वो, तो परेशानियां और संकट होने पर भी उसको आनंद की कमी नहीं होगी, फिर भी वो खुशी रहेगा। ये अद्भुत बात है, इसकी बहुत अद्भुत बात है। ये अद्भुत क्यों है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही आनंद रहने का है, आनंदमय जैसा हमारा स्वभाव है, मूल स्वाभाविक भाव है हमारा ये। इसलिए जब उस मूल स्थायी भाव को हम जागरूक करते हैं तो हमारा आनंद भी खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि हम भी शाश्वत हैं और भगवान भी शाश्वत है, समय के प्रभाव से मुक्त है, समय के प्रभाव में हमारा शरीर है, इसलिए वो नजर आता है कि थक गया फ्रेश हो गया बुढ़ा है जवान हो गया जवान है बुढ़ा हो गया, ये सब नजर क्यों आता है, क्योंकि वो शरीर है और वो शरीर समय के प्रभाव में है, आत्मा शरीर के समय के प्रभाव में नहीं रहती है। इसलिए एक बार उसका स्वरूप जागरूक आपने कर लिया तो चिरंतन आनंद का अनुभव करते रहेंगे आप। इसलिए ये प्राथमिक ज्ञान जो है समझना जरूरी है, कम से कम अगर हमको आनंद की अनुभूति नहीं भी हो रही हो कम से कम नॉलेज के रूप में जाना जरूरी है कि हम कौन है। जैसे आपको अमेरिका जाना है, अभी तो गए नहीं हम अमेरिका में, लेकिन हम मैप निकाल रहे हैं, गूगल मैप खोल रहे हैं, वो देख रहे हैं उसको सैटेलाइट के थ्रू देख रहे हैं किधर है क्या है कितना अंतर है यहां से कितना अंतर है वहां से कितना अंतर है वहां जाना है उधर जाना है। जानकारी करने से क्या होगा, आपको प्रेरणा होगी कि जाना है आपको उधर, जानकारी करना बहुत जरूरी है। तो भूख लग रही है आपको तो पता होना चाहिए कहाँ खाना है आपको, थोड़ा नॉलेज कर रहे हैं कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ जाके कितने खर्च होंगे और कहाँ जाना है कितना समय लगेगा उसके लिए जानकारी करना जरूरी है। वैसे अगर आत्मा के स्वभाव का अनुभूति अब तक नहीं भी हो गया है फिर भी ये जानकारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और जैसे ही वो जानकारी करने के बाद तुरंत आप उस पर अमल करेंगे तुरंत ही आपको उसका अनुभव आएगा। ये शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण सब कुछ साथ में आ गया उसके, एक ही झटके में आ गया। और ये प्रक्रिया जो है बड़ी दिव्य प्रक्रिया है, जिन्होंने इस प्रक्रिया को अपने जीवन में बड़ी गंभीरता से अपनाया है उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। सब प्रकार के भौतिक दुनिया के कलयुग के कष्ट होने पर भी उसके जीवन में आनंद रहता है, उसके चेहरे पर रौनक रहती है, खुशी रहती है, आनंद रहता है। थका हुआ होने पर भी उसके चेहरे पे एक रौनक रहती है भक्ति की, क्योंकि प्रक्रिया ऐसी है, उस व्यक्ति का कोई गौरव नहीं उसके अंदर। ये प्रक्रिया कैसी है? सुखम कर्तुम अव्ययम, केवल सुख नहीं है, सुख उसको लगाते हैं, सुकुमारी, सुगंध, मतलब उसमें अधिकता, अधिक मात्रा में उसका वर्णन होता है, कभी हम कहते हैं सुगंध, सुकुमारी मतलब बहुत अति कुमारी, जो कुमारी अवस्था में है, वैसे सुसुखम, केवल सुख नहीं है, अति सुख है उसके अंदर, दिव्य सुख है, चिरंतन सुख है। और अव्ययम जो है, क्योंकि समाप्त नहीं होता है वो, अब 100 रुपए लेके गए बाजार में, गए 1 रुपए 1 किलो गेहूं खरीदा, चावल खरीदा, 50 रुपए समाप्त हो गए, ऐसा इसमें नहीं होता है। हमारे पास अगर भगवान का नाम है और हमने आपको दे दिया तो आपके पास भी, हमारे पास भी, तभी समाप्त नहीं होता है। और अव्ययम का और एक अर्थ है कि उसको कोई चोरी नहीं कर सकता है, मेरे जेब में 100 रुपए के 10 नोट है, आप 2 चोरी कर सकते हो, 2 आपके पास 8 मेरे पास, लेकिन इसको चोरी कर सकता नहीं, इतनी अजीब चीजें थी। और हमेशा बढ़ते रहता है, एक और एक अर्थ है उसका अव्ययम का, कि व्यय तो होता नहीं है लेकिन वृद्धि जरूर होती रहती है, ऐसा दिव्य धन। इस भौतिक दुनिया का धन जो है जिसके पीछे हम भागते हैं वो चोरी करने लायक है, जो समाप्त होने लायक है, और क्या बताया, कम भी होते रहते हैं, व्यय होते रहते हैं उसका। तो ये प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो आपको ऐसे धन से अपने आप को परिचय करा देती है, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा स्वभाव है, जिसको हम खो चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री का लड़का इस ज्ञान को खो चुका है कि मैं प्रधानमंत्री का लड़का हूं, इसको जानता ही नहीं, वो ज्ञान उसको पता ही नहीं, तो वास्तव में इसको जरूरत है उसकी समझना कि मैं कौन हूं, तब वो ऐसे कार्य करेगा, कॉलेज जाएगा, पीएचडी करेगा, फिर जाके अमेरिका जाके पढ़ेगा, प्रधानमंत्री का लड़का है, पहले वो बूट पॉलिश करा रहे, बोलना नहीं। हम सब लोग ये नहीं जानते हुए कि हम भगवान ज्ञान से हम सब लोग बूट पॉलिश कर रहे हैं, ध्यान रखने के बाद, दिस इज अ फैक्ट, वैसा ही कार्य कर रहे हैं, एकदम फालतू कार्य कर रहे हैं, और समझ रहे कितना बढ़िया कर रहे हैं, इतनी अच्छी चमक ला रहे, देखो चेहरा भी देख सकते हैं जूते के अंदर, इतना चमक लाता हूं मैं, मेरे पास ऐसा पॉलिश है कि इतना बढ़िया लगता है, मेरे हाथ में इतनी कला है, मेरा कपड़ा इतना महीन है कि जूता चमकते रहता है, इसमें आप फंसे रहे। लेकिन प्रधानमंत्री का लड़का अपने आप को पहचानने के बाद में कभी किससे भूल के बात भी नहीं करेगा, मैं पहले ऐसे करता हूं, वो बोलेगा क्या अपने महल में जाके उसको मंत्रीगण मिलने को आएंगे, पता है मैं दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर वहां पर पॉलिश किया करता हूं, आपका भी किया है, ऐसा बोलेगा क्या वो, उसको शर्म आएगी बोलने के लिए, तो लज्जा आएगी कि मैं कैसे कार्य करता था अनजान अज्ञान होते हुए। उसी तरह से आपको भी बाद में लज्जा आएगी कि मैं भक्त बनने के पहले क्या करता था, मांसाहार करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, झूठ बोलता था, लोगों को फंसाता था, चीटिंग करता था, कैसे कपड़े पहनता था, कैसे मेरे बालों की शाइल थी। हाँ, आपका पुराना फोटो आप किसको दिखाएंगे नहीं, 2 तलवार वाला। अक्सर लोग भक्त बनने के बाद में अपना पुराना बचपन का जवानी का फोटो किसको दिखाते नहीं, तो बड़ा अजीब दिखता है वो, अभी के सामने अभी का फोटो निकालेंगे तो अच्छा दिखता है, उसके बाद में पहले का बहुत खराब दिखता है। तो जैसे प्रधानमंत्री का लड़का कभी किसी को बताएगा नहीं कि मैं 10 साल प्रधानमंत्री क्या किया, वैसे आप लोग भी नहीं बताएंगे। यही इस जीवन के श्रेष्ठता का लक्षण है कि जब श्रेष्ठ जीवन अपनाएंगे तो अपने आप ही पुराने जीवन की हमको ही घृणा होगी कि हम कैसे थे पहले, क्या करते थे। ये प्रक्रिया इतनी महान है कि तिनके को भी वो इतनी जगह पर बिठा लेती, श्रेष्ठ जगह पर। वैसे तो अणु मात्र है, मुझे बुझे हुए दीपक की तरह है, लेकिन जैसे ही भक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस दीपक से प्रकाश आता है, सब दुनिया उस प्रकाश में सत्य का है वो देख सकती है, दुनिया को भी रोशनी देगा और खुद भी प्रज्वलित होगा, खुद रोशनी पाएगा दुनिया को रोशनी देगा, ऐसा परिवर्तन होता है उस बुझे हुए दीपक के अंदर। ये प्रक्रिया को सबको अपनाना है। क्यों लोग यहां बैठे हुए, सब लोग आप लोग इतने भाग्यशाली लोग हैं, समय निकालकर इतनी बड़ी संख्या में यहां पर बैठे हुए हैं, और कुछ भी कर सकते हैं आप, टीवी देख सकते हैं, मैच देख सकते हैं, क्या वो सीरियल देख सकते हैं, नाच देख सकते हैं, नंगा नाच टीवी पर जो गंदा काम होता है उसको देख सकते हैं, लोग देखते ना हजारों लाखों लोग अभी देख रहे हैं बैठ के, आप लोग यहां तो बैठे हो टाइम पास करने के लिए, इसलिए बैठे हुए हैं कि हम जानना चाहते कि हम कौन है। वो लोग जो सब कर रहे हैं वो जानते नहीं कि हम कौन है, इसलिए वो जो अपने आप को समझते हैं वो कार्य करते रहते हैं, लेकिन जो समझ चुके हैं कि हम कौन है या समझना चाहते हैं कि हम कौन है वो यहां बैठ सकते हैं या और किसी मंदिर में बैठे होंगे, कीर्तन करते होंगे, समझते समझने का प्रयास कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, और होगा जरूर। ये मार्ग ऐसा है कि एक बार उसमें आ गया ना शायद हम छोड़ने का कोशिश करेंगे लेकिन भगवान आपको छोड़ेंगे, इतना प्रेम करेंगे। एक बार उनके ओर कोई मुड़ गया तो बाद में हम भूल सकते हैं लेकिन वो नहीं भूलते कभी कि इस जीव ने मुझे एक बार पुकारा था तो मैंने उसको भूलूंगा, वो शायद मुझे भूल जाएगा लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इतनी दिव्य प्रक्रिया है, अपने वास्तविक पिता को मिलने की प्रक्रिया। अपने वास्तविक पिता को मिलने के बाद में पिता का जितना प्रॉपर्टी है वो अपना बनाने की प्रक्रिया। जीसस क्राइस्ट की बाइबल में लिखा है द मीक एंड द हम्बल विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड। उसका मतलब क्या हुआ, जैसे रुक्मिणी के साथ जब भगवान ने उसका हरण किया तो रथ में जा रहे थे वो, तो फिर वो शार्व जो था अपने रुक्मिणी ने, वो तो रुक्मिणी था उसका भाई, वो सैन्य लेके आया पीछे से और भगवान आराम से रुक्मिणी को लेकर जा रहे थे तो सैन्य लेके सावधान आह्वान किया उसको युद्ध करने के लिए। रुक्मिणी देखा नहीं मेरा भाई आ रहा है, ये मेरे पति ये मेरे भाई दोनों युद्ध करेंगे तो क्या कैसे होगा, अच्छा नहीं होगा, डर गई वो। तो भगवान ने कहा कि हमारी सेना मतलब तुम्हारी हमारी सेना अभी सामना करेगी इसका, ऐसे नहीं कहा कि मेरी सेना इसका सामना करेगी, जैसे ही वो उनकी हो गई वो सेना भी उनकी हो गई अपने आप ही, वो द्वारका का राज्य भी उनका हो गया, बटरानी बन गई उनकी तुरंत, सारी प्रॉपर्टी जो कृष्ण की थी वो सब ऑटोमेटिक रुक्मिणी की हो गई। उसी तरह से जैसे ही हम भगवान का भक्त बनते हैं तो भगवान का सारा जितना संपत्ति है जितना लोक है वो सब हमारे हो जाते हैं, है ना। ये ऐसी प्रक्रिया है, अपने आप को जानने की प्रक्रिया के अंदर ये सब कुछ भयंकर चीजें हो जाती है। भयंकर मतलब बहुत दिव्य चीजें हो जाती है, भयंकर भी लगती है क्योंकि अरे ऐसा तो मालूम नहीं, जैसे वो पुलिस वाले पता चलता है कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में, ट्यूनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा भी हो जाएगा दाढ़ी भी करने पड़ेगी मुझे, अभी पहले करता नहीं था, थोड़ा टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में क्योंकि इतनी बड़ी चीज है ना वो वोट पॉलिस का जगह किधर और प्रधानमंत्री का बच्चे का शान किधर। वैसे ही ये दुनिया में आहार विद्रोह भोग के अंदर फंसने वाला जीव अगर मन पड़ता है कि मैं अभी भगवान के राज्य के भागीदार बनूंगा तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, वो विरोधाभास है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगने के बाद में आनंद आएगा, बहुत समझ में आएगा तो बहुत आनंद आएगा। तो ये जो भगवान यहां पर समझाने का प्रयास करें कि आप कौन हो, ये समझने में बड़ा आनंद का खजाना छुपा हुआ है। केवल भगवान नॉलेज नहीं दे रहे, भगवान उसको उस स्थिति पर आकर उस स्थिति के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। वो क्या उन्होंने क्या कहा, माम अनुस्मरण युद्ध चल, युद्ध तो आपको करना ही है, ऐसे नहीं कि मैंने आपको ज्ञान दिया तो काम हो गया आपका, अब मैं युद्ध करूंगा तुम बैठ जाओ भजन कर दो, ऐसा नहीं बताया। आप माला लगे बैठोगे मैं अपना चक्र लेके युद्ध करूंगा, नहीं, तुमको युद्ध करना ही है, तुम कार्य करने से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन माम अनुस्मर युद्ध चल, मेरा स्मरण करके युद्ध करो तो तुम फल के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे, तुम सुख दुख के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे, तुम जय पराजय के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे तो अभी से ही आनंदी हो जाओगे। ये प्रक्रिया कैसी है, फल प्राप्त होने पर खुशी नहीं मिलेगी आपको, अभी से खुशी मिलेगी। जैसे हमारे एमबीबीएस में ऐसा होता ना, सेकंड एमबीबीएस में हमको मिलता है स्टेथोस्कोप और मिलता है एप्रन, और वो एप्रन और स्टेथो लेकर हम वार्ड में जाते हैं तो सब हमको डॉक्टर बोल के पुकारते हैं, है ना। सब लोग पेशेंट लोग तो डॉक्टर बोल के पुकारते हैं, सिस्टम डॉक्टर बोलेगी हमको। अब तक तो पूरा डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने प्रक्रिया में प्रवेश किया है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, उसको डॉक्टर ही पुकारते हैं। वैसे ही कुछ इस पे अंदर है, आप भक्त बने नहीं अब तक, लेकिन थोड़ा आपको भक्ति की पदवी मिल जाएगी, और भक्त को जो पूरा आनंद मिलने वाला है उसका थोड़ा सा आनंद आपको तुरंत ही उसका अनुभव मिलेगा, सैंपल तुरंत मिल जाएगा आपको। क्या आप खरीदने वाले आगे जाकर उसका सैंपल तुरंत मिलेगा फ्री में, टेस्ट करो अभी, भगवान की कृपा है ये बड़ी। ये क्या है, केवल हमको जानने की प्रक्रिया, और जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली भगवान का भी जानकारी इसके अंदर छुपा हुआ है पूरा ऑटोमेटिक अपने आप। जैसे हम लोग वो होता है ना कोयला, अभी देखो मौसम सर्दी का है, सब लकड़ी ठंडी रहती है, बहुत जलने में तकलीफ होती है, तो क्या नली में से उसको फूंकर लगाते ना, फूंक मारते हैं उसके ऊपर, जैसे ही वो राख उड़ जाती है क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होता है तुरंत हवा देते है ना। तो वैसे ही जैसे ही आत्मा के ऊपर ये माया के आवरण निकल जाते हैं तो आत्मा का जो रियल स्वरूप है वो तुरंत जागृत होता है अग्नि की तरह, और वो जैसे अग्नि प्रकाश और गर्मी देती है तुरंत आत्मा के अंदर सच्चिदानंद स्वभाव जो प्रकट होने लगता है। अरे कल तक तो इतने दुखी दिखाई पड़ते थे, आज तो फ्रेश लग रहे हो बहुत। हाँ 6 महीने से जप कर रहा हूं भगवान के नाम, इसलिए हो रहा है। हमारे कमावृष्ण महाराज थे, हाँ इतने पावरफुल संत थे वो, उन्होंने भरी सभा के अंदर, ऐसा नहीं कि उसमें कोई संत लोग बैठे सभा में, सब भक्त लोग बैठे हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, सब प्रकार के लोग थे उसके अंदर। उन्होंने सबके सामने टीवी पर डायरेक्ट चैलेंज दे दिया, उन्होंने कहा 1 महीने तक अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का प्रामाणिक हृदय से जप करेगा और 4 नियम का पालन करेगा, भगवान का संग करेगा, प्रसाद खाएगा और शास्त्र पढ़ेगा, ये जो विधि करेगा, अगर वो खुश नहीं होगा, अगर उसको आनंद की अनुभूति नहीं होगी तो हम उसको $10,000 देंगे। मतलब कितना होता है वो, 5.5 लाख आज के हिसाब में, और वो उस समय की बात है, वो बहुत पहले की बात है, मतलब आज से कम 40 साल पहले की बात होगी, कम से कम 35 साल पहले की बात। ओपन चैलेंज दिया उन्होंने, $10,000 देंगे उसको गिफ्ट के रूप में, लेकिन एक भी आदमी सामने आया नहीं $10,000 लेने के लिए, जिसने भी ट्राई किया वो भक्त बन गया मंदिर में। ये ऐसे क्यों हो सकता है, जिसने स्वयं ये प्रक्रिया करके उस आनंद का अनुभव किया है वही इस यकीन के साथ बोल सकता है कि मैं इतना बड़ा दांव पे रकम लगा रहा हूं, मैं एक भी ज्यादा हारने वाला नहीं इसके अंदर, मैं जीतने वाला हूं, पता है उसको। इसलिए वो इतनी हिम्मत के साथ में जनता में चैलेंज दे सकता है, अगर उसको हारने का डर है तो वो थोड़ा सा डर डर के एक नोटिस लगाएगा कोने में, कोई देखने पाए उसको, ऐसा तो खुले आम चैलेंज दे रहे। तो कोई धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, काले रंग का हो, गोरे रंग का हो, किसी भी देश का हो, ये प्रक्रिया अपनाएगा तो आनंद ही होगा। और सत्य है कि नहीं ये, अरे चाइना के लोग, हांगकांग के लोग, फिलीपींस के लोग जो कुत्ता खाते हैं, सांप खाते हैं, कॉकरोच खाते हैं, हाँ, और इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग इतना व्यभिचार करते हैं, इतना पाप करते हैं, क्या नहीं करते वो, और बर्मा के लोग और ऑस्ट्रेलिया के लोग और इंग्लैंड के, यूरोप के लोग और साउथ अफ्रीका के काले लोग जो ड्रग्स लेते हैं, क्या क्या नहीं करते वो, मक्खी खाते हैं, मक्खी प्रवचन में बैठे बैठे, हाँ प्रभुपाद ने कहा था एक बार साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में 5 नियम है, हाँ व्यभिचार नहीं करना, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और मक्खी नहीं खाना, ऐसे बताया था उन्होंने। ऐसे ऐसे लोग, हाँ खास करके मुझे देखकर ना, अच्छा हमारे हॉस्पिटल में 2 हफ्ते पहले दो फिलीपींस के भक्त आए थे, वो कॉन्स्टेंटली हरे कृष्ण मंत्र गाते थे, वो कभी भी मुझे मिलता था और वे सिंगिंग हरे कृष्णा, फर्स्ट लिस्ट में खड़े हैं तो भाई टेस्ट करने जा रहे हैं तो भाई हरे कृष्ण गा रहे हैं, मंत्री हमारे डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तो हरे कृष्ण गा रहे हैं, जो मौका मिलेगा तो आरती में आके आरती गा रहे हैं, जो नरसिंह आरती खुद गा रहे हैं। और आज भी मैं जमुना किनारे उनको देखा, खुश एकदम आनंदी, कौन थे वो? फिलीपींस के लोग। फिलीपींस के लोगों को अपना धर्म नहीं है, फिलीपींस के लोगों के ऊपर अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड सब लोगों ने राज्य करके अपने अपने लोगों जैसा उनको बना दिया है, कोई अपना धर्म नहीं उनको। वो सांप खाते हैं, कॉकरोच खाते हैं, मच्छर खाते हैं, कीटक खाते हैं, खेकड़ा खाते हैं, जो भी नहीं खाना चाहिए वो सब खाते हैं, उनका कोई संस्कृति नहीं है। एक बॉयफ्रेंड फिलीपीन में है, एक सऊदी अरब में है, एक इधर है उधर, हर जगह पे कोई ना कोई उनको चलते रहता है। मैंने खुद अपने आंखों से दिखाया क्योंकि मैंने सऊदी अरब में काम किया है, मैंने शूद्रों से भी नीचे चांडाल तो चांडाल वो उनकी जाति है, धर्म के अनुसार जो व्याख्या है उसकी। और वो आज ब्राह्मण बनकर डीडी वर्शिप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, इतने चेहरे में मैं आज वही प्रभु जी को बता रहा था यमुना किनारे स्टेप पे बैठकर कि देखो इस व्यक्ति को मैंने कभी दुखी देखा नहीं, ये बड़ी बीमारी लेकर हॉस्पिटल में आया था और कई रुपए खर्च किए उसने अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए, लेकिन कभी भी इतना तकलीफ होने पर भी दुखी दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उसने इस प्रक्रिया को अपना लिया जीवन में समर्पित रूप में। इसलिए वो फिलिपिनो नहीं बचे गए, रहा अभी वो वैष्णव हो गया। तो तमाम कुछ हमारा चैलेंज क्यों दिया था, क्योंकि प्रक्रिया यूनिवर्सल है, केवल हिंदुओं के लिए, केवल भारतीयों के लिए, केवल ब्राह्मणों के लिए, केवल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है उनके लिए, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक व्यक्ति हर एक स्थिति में जो मनुष्य करके जन्म लिया है, जिसने मनुष्य के गर्भ से जन्म लिया है, उस हर व्यक्ति के लिए ये प्रक्रिया लागू करने पर आनंद का अनुभव होता है, ये शक्ति है उसके अंदर। और वो आनंद भी कैसा? चिरंतन आनंद। 10 दिन किया जिमनेशियम में गए, 10 दिन किया तो मसल बड़े हो जाते, छोड़ दिया तो फिर हैट बढ़ जाता है, ऐसी प्रक्रिया नहीं है, वो चिरंतन प्रक्रिया है। प्रसाद कभी भी खाओ आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं कल था आज नहीं, ऐसा नहीं। भगवान को भूख लगा कि आप खाएंगे आपको खुशी खुशी होगी उसकी, ऐसा दिव्य आनंद, ऐसा जिसका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा आनंद होगा कि क्या है क्या इसके अंदर, इतना खाते हुए खुशी हो रही है। वही दाल है, मैं हमेशा मंदिर में पूछता था 1984 के अंदर कि क्या तुम्हारे दाल के अंदर क्या है, जरा बताओ ना रेसिपी, मेरे को माँ को बताने आए घर में बनाओ। और मैं कितनी बार समझने की कोशिश किया और माँ को बताया, लेकिन वैसा नहीं बना, क्योंकि उसको भगवान को भोग लगाया हुआ है। जो प्रक्रिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहे हैं आप, किस भावना से कर रहे हैं, उससे आपको उसकी अनुभूति होगी। और ये सब जो है ना, ये कुत्ता बिल्ली के लिए नहीं है, मच्छरों के लिए नहीं है, पंछियों के लिए नहीं है, इंसान के लिए है, ये हम और आपके लिए है। जितना ज्ञान भगवान ने दिया है, 1700 श्लोक लिखे इसके अंदर भगवान ने दिए हैं। गीता महात्म्य में लिखा है कि एक श्लोक का 1/4 हिस्सा भी अगर आप अपने जीवन में उतारते हो तो भगवत धाम के हकदार बन जाते हो। यू कैन एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड, कृष्ण लोक में आप प्रवेश कर सकते हो अगर 1 श्लोक का 1/4 हिस्सा समझ कर जीवन में उतारेंगे, उस पर अमल करेंगे, वैसा जीवन जिएंगे जैसे अर्जुन ने जिया, तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकते। साधारण शास्त्र नहीं है ये, इसको हिंदू, ईसाई, सिख और बुद्धिस्ट और जू और सब लोग उसको मानने जाते थे, ऐसा अनोखा शास्त्र ही। एवरीबडी, हर धर्म का लोग, धर्म के लोग इसको मानने देते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ स्पिरिचुअल साइंस है, ग्रंथ है। और इसको भगवान ने ये बताया कि हम कौन हैं, अपनी पहचान दी है कि हु आर यू। और वो अगर हम नहीं पहचानेंगे इस जीवन में तो क्यों मनुष्य बनना है, उससे अच्छा सुअर बनके सोना अच्छा है, कबूतर बनके सेक्स करना अच्छा है, भालू बनके सोना अच्छा है, व्हाई यू टू बिकम ह्यूमन बीइंग। उनका भगवान का हमारा टाइम पास क्यों कर रहे, व्हाई शुड बी वेस्ट अवर टाइम एंड गॉड्स टाइम। ये बड़े योजनापूर्वक पद्धति से सोच विचार करके हमको दिया है कि अभी ये जीव दर दर की नौकरी खाकर अनंत जन्मों में भटक 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 कर अभी वो योग्य हो गया है मुझे जानने के लिए, इसलिए मैं उसको मनुष्य का जन्म दे रहा हूं, मेरा शास्त्र भी ले रहा हूँ, मेरे भक्तों को भी उसका भेज रहा हूँ, सारी व्यवस्था कर रहा हूँ, मेरा परिचय करने की मैंने योजना बना के रखी है उसके लिए, लेकिन फिर भी हम मुंह मोड़ लेते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो हमसे और आपसे प्रेम चाहते हैं। ये स्वरूप जो है ना आत्मा का, ये तो मटेरियल स्वरूप आपको दिया है कि भाई इसको शस्त्र काट नहीं सकता है, अरे उसको आग नहीं जला सकती है, अरे उसको जल नहीं छू सकता है, उसको कोई काट नहीं सकता है, उसको कोई छेद नहीं कर सकता है, कोई गीला नहीं करता, कोई सूखा नहीं कर सकता है। ये तो उसका फिजिकल मतलब फिजिक्स के रूप से उसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव प्रेम है, प्रेम। ये तो उसका भारी, जैसे आप सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, आपकी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है, आपके बाल आधे गोरे आधे काले हैं, आप डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, आपका स्किन जो है वो मद्रास जैसा है, ये सब आपका भारी वर्णन है, आपके व्यक्तित्व का वर्णन नहीं है। इसके अलावा भी आप कुछ हैं, आप बड़े मधुर गाने वाले हैं, आप बहुत अच्छे रसोई बनाते हैं, और आप बहुत मीठे मीठे बोलने वाले लोग हो, मिलनसार स्वभाव है आपका, ऐसा कई चीजें आपके अंदर है जो उस वर्णन में नहीं आते। तो ये वर्णन जो है भारी वर्णन है आत्मा का। सही वर्णन क्या है आगे बताते हैं भगवान, कि प्रेम का स्वरूप है। नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम विद्धाति कामान, चिरंतन रूप से भगवान का अंश है, और भगवान में जो प्रेम भरा हुआ है इसके अंदर भरा हुआ है, इसका स्थायी भाव है। जैसे प्रक्रिया को अपनाते हैं वो प्रेम जागृत होता है तुरंत ही, सब जीवों के प्रति भगवान के प्रति, तब जीवन आनंद में होता है। सब जीव अपने भाई और बहन नजर आते हैं उस समय, सबके प्रति दया करुणा और प्रेम उत्पन्न होता है, सबके प्रति सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है, नाम रुचि, इसके बाद में क्या वैष्णव सेवा मतलब भक्तों की सेवा, और उसके बाद में क्या जीव दया, वैष्णव के आगे जाकर सभी जीव मात्र के लिए दया और प्रेम उत्पन्न होता है। ये प्रक्रिया को भगवान हमको पहचान करा रहे हैं, साधारण प्रक्रिया नहीं है ये। हमारे अंदर जो प्रेम का भंडार भरा हुआ है उसको समझने की प्रक्रिया है, और उस तरह से अनुभूति करने की प्रक्रिया है, उस तरह से जीवन जीने की प्रक्रिया है। इसलिए हम सब लोग बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमको ये सब परिचय हो रहा है, धीरे धीरे क्यों ना हो। और उसके आगे जाकर वो भगवान श्री वृंदावन में, श्री जगन्नाथपुरी में, श्री मायापुर में, श्री अयोध्या में, द्वारका में क्या क्या दिव्य प्रेम भरी लीलाएं करते हैं उसका भी परिचय हो जाता है। फिर जीव को यहां पर जो भी कार्य है वो करना अच्छा लगता नहीं, जैसे प्रधानमंत्री के बालक को फिर दोबारा जाकर दिल्ली के स्टेशन पर बैठकर बूट पॉलिश करना अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। जब वो मेज पर बैठकर 56 भोग खा रहा है, 56 लोग उसको सेवा कर रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया ऊंची वस्त्र पहन रहा है, और अच्छी द्रव्य लगा रहा है शरीर को, और क्या क्या कर रहे हैं अपने लिए, दोबारा वो कर पाएगा क्या? आप क्या पहले बहुत एक्सपर्ट 5-स्टार पॉलिश वाला था वो, लेकिन अभी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उसकी रुचि समाप्त हो गई है। उसने जब उच्च अभिरुचि प्राप्त कर लिया है तो उसको वो अभी अभिरुचि जो रुचि है वो नहीं कर सकता है, वो दोबारा नहीं कर सकता उस काम। वैसे ही भक्ति का जीवन, एक बार वो आनंद चख लिया भक्ति का, एक बार समझ गए कि हमारे अंदर कितना प्रेम का भंडार है, एक बार समझ गए हमारे भगवान कितने बड़े प्रेम के भंडार है, तो जीव दोबारा जाकर मांसाहार व्यभिचार नशा नहीं कर सकता है। उसको एक बार स्वाद लग गया उच्च रुचि का तो ये सब बेकार के काम नहीं कर सकता है। हमारे गिरिराज महाराज जी को प्रश्न पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा, क्योंकि वो बड़े अमीर 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 आदमी के लड़के थे, वो कभी गाड़ी के बिना प्रवास नहीं किया उन्होंने। वो अभी जुहू मंदिर के जंगल था उस समय, वो जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगे, वो ब्रह्मचारी बनकर सर मुंडवा कर, जब खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी उस समय, चूहे भरे पड़े थे उस समय जंगल में, ऐसे झोपड़ी में रहते थे। तो एक रिपोर्टर आया, उसने बोला कि आप ब्रह्मचारी हो मतलब आप कोई सेक्स वर्क नहीं करते हो, शादी वादी नहीं करने वाले हो। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो उन्होंने क्या पूछो, तो उन्होंने समझो आप जंगल में हो, बहुत अच्छा वातावरण है, ठंडा भी नहीं है और गर्मी भी नहीं, बहुत अच्छा सीनरी है और कोई नहीं वहां पर, केवल एक विश्व की सबसे सुंदर ज्योति आपके साथ में है और वो आपके साथ में भोग देना चाहती है, तो आप क्या करेंगे? मानव में ये गूगली प्रश्न है, क्या उत्तर दे इसका? तो उन्होंने इतने शांत मन से और शांत भावना से बताया कि अगर रात का समय है बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छी भोग की साधना साधन अवेलेबल है, उपलब्ध है, और किसी व्यक्ति ने मुझे एक सुंदर थाली में अपनी विष्ठा यानी संडास ला के दिया, खाओ उसको, तो मैं खाऊंगा क्या उसको? अंधेरा हो तो क्या हुआ, कोई देखने वाला भी नहीं है, अकेला हूं मैं, अब मुझे कोई विष्ठा ला के दिया, मैं खा सकता हूं क्या? नहीं खा सकता, क्योंकि वो विष्ठा जो है वो जंगल में विष्ठा है और यहां पर भी विष्ठा ही है, और जंगल जाने से अकेला होने से उसका अमृत नहीं बनता है। और जो मैं विष्ठा ये समझकर जान चुका हूं और त्याग कर चुका हूं, वो मैं जंगल जाने से उसको स्वीकार कर लूंगा क्या? मेरी अनुभूति यह है कि वो विष्ठा यहां पर भी विष्ठा है, उधर भी विष्ठा है, उसको मैंने यहां पर इसलिए नहीं त्याग दिया कि यहां सब लोग देखने वाले हैं मुझे, इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए मैं यहां पर नहीं खाता हूं उसको, जंगल में रात में खाता हूं उसको, ऐसा नहीं है। वो जिसको समझ चुका है वो कि ये विष्ठा है, उसको त्याग देता है। हम कैसे होते हैं, हम जब लैटर में जाते हैं दोबारा घूम के देखते हैं क्या क्या छोड़ा हमने उधर, तुरंत निकल जाते हैं वहां से बाहर, क्योंकि वो त्याज्य वस्तु है, त्याग करने योग्य वस्तु है, भोग्य वस्तु नहीं है वो। तो जिस तरह से हम अपनी विष्ठा को त्याग करते हैं, उस तरह से भक्त जो है वो पहले वाले घृणित कार्यों को त्याग कर देता है और दोबारा उसको चाहता नहीं जाते, क्योंकि ये प्रक्रिया ने उसको उच्च स्थिति पर जाकर रख दिया है, उसके बाद में बाबा वो त्याज्य वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता है। और दुनिया क्या कर रही है, जो भक्तों ने विष्ठा मानकर त्याग दिया है सब दुनिया उसको भोग कर रही है। हमारी विष्ठा को कौन खाता है? सुअर खाता है, हम त्यागते हैं वो तुरंत खा लेता है उसको। तो संत लोग जो त्याग देते हैं उसको दुनिया भर के लोग भोग के रूप में खाते रहते हैं, बड़े चाव से खाते रहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, ये बड़ी जोक की बात नहीं है, विनोद की बात नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। संत लोगों को ये देख के बड़ा दुख होता है कि अरे इतना बड़ा अमृत छोड़कर ये लोग विष्ठा क्यों खा रहे हैं? तुम्हारे लिए अवेलेबल है, भगवान ने मनुष्य जन्म में तुमको इतना बड़ा सुख देने की व्यवस्था बना के रखी है, क्यों नहीं लोग तड़प रहे हैं? वो भी इतना तड़प तड़प के उसको कमाने के लिए इतना पीछे लगते हुए, फिर भी उससे कोई आनंद नहीं मिलता, फिर भी भागते हैं उसके पीछे, दर दर के ठोकरे खाते रहते हैं, फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। ये देखकर संत के मन में करुणा होती है और वो अधिक उत्साह से प्रचार करता है कि भाई ले लो अमृत को, ले लो ये अमृत है, अपने आप को पहचानो तुम कौन हो, इस प्रक्रिया को ले लो और आनंदी हो जाओ, इनके ना होते हुए भी तुम बड़े आनंदी रह सकते हो, इसका प्रमाण आपको देते हैं, आप ले लो। तो हम सबको भी इसी विश्वास के साथ में इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। केवल ये नहीं बुधवार का दिन है भैया सबको आना है, इधर बैठा है थोड़ा सा अच्छा को सुन लेते हैं, थोड़ा सा पुण्य बढ़ जाएगा, थोड़ी बहुत सब सुकृति बढ़ जाएगी, इस भावना से नहीं करना है, इसको जीवन की पद्धति बनाना है। यू शुड मेक इट वे ऑफ लाइफ। सुबह से शाम तक सातों दिन, तीसों दिन महीने के और बारह महीने तक पूरा जीवन भर सोच विचार में अंतर आना चाहिए इस प्रक्रिया के अनुसार। इसलिए हमको यहां पर हफ्ते में ही बढ़ाना है, उस प्रक्रिया की करने की जो प्रवृत्ति है उसको दुगुना करने के लिए, उसको द्विगुणित करने के लिए, उसको उत्साहित देने के लिए, उत्साहित करने के लिए हमको आना है। जो हम दिन भर करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें और अधिक उत्साह से करने की प्रेरणा लेने के लिए यहां पर आना है एक बार हफ्ते में, ताकि हफ्ते भर के लिए प्रेरणा मिलेगी, फिर दोबारा हफ्ते में आना है। जब मौका मिला तो वृंदावन जाना है, जब मौका मिला भक्तों के संग में जाना है, रोज घर में प्रसाद लगाना है, भगवान को भोग लगाकर अर्पण करके भोजन करना है, उनका नाम का जप करना है, तो फिर हफ्ते में फिर दोबारा आके बैटरी को चार्ज करना है। ऐसी दिव्य प्रक्रिया है और भगवान बड़े प्रेम से हमको दे रहे हैं, उसको स्वीकारना चाहिए। इस प्रकार में तो दुर्भाग्य किसका है, हमारा दुर्भाग्य किसका है? भगवान तो भंडार लुटा रहे हमारे ऊपर, हमको इंटरेस्ट नहीं, तो दुर्भाग्य हमारा, लेना चाहिए, हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। हाँ, बार बार आना नहीं है ठोकर खाने के लिए, वही कार्य करते हैं, दोबारा नहीं आना है यहां पर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, नहीं आना है इधर हमको। बस इसी समय इसी जीवन में निश्चय करना है कि इस प्रक्रिया को अपनाकर दोबारा यहां पर नहीं आना है, चिरंतन जीवन जो है भगवान धाम में उसको जीने के लिए वहां जाना है, उसकी प्रैक्टिस यहां शुरू करके योग्य बन के वहां पर प्रवेश करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न है किसी? हाँ प्रोजेक्ट पूछिए।
बता रहे थे जैसे अग्नि जलती है, अग्नि में से चिंगारियां प्रकट होती है, तो जन्म होता है जैसे चिंगारियों का। तो उस भक्त ने बताया कि ऐसे ही जीवात्मा जो है, भगवान बड़ी चिंगारी है और जीवात्मा ऐसे जन्म लेते हैं। इट इज ट्रू? और
हम सब नित्य रूप से भगवान के अंश हैं, अभी पैदा नहीं हो रही, नहीं नहीं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, इसका मतलब क्या हुआ कि हम चिरंतन काल से भगवान के अंश हैं, चिरंतन काल से, अनादि काल से भगवान के अंश हैं। हम नए नए पैदा नहीं हो रहे, हम हमेशा थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। हाँ, नत्वम ने नत्वम नत्वम नत्वे हम जातु नासम नत्वम ने में जनाधिपा। हाँ, इसका मतलब क्या है? पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। नत्वे वा हम जातु नासम नत्वम ने में जनाधिपा। ये उपमा अच्छी है, कविता वैसे अच्छी है, लेकिन हम लोग नए नए पैदा नहीं हो रहे, हम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? अगर प्रश्न नहीं है इसका मतलब यह है कि आप सब लोग समझ चुके हैं, करेंगे। यस मंत्री,
अनुवाद के अंदर जो बताया गया है आत्मा के गुण, उसमें एक शब्द है स्थिर का सदैव, तो यहाँ पे स्थिर शब्द थोड़ा समझाइए।
स्थिर क्या?
स्थिर का सदैव, स्थिर का जो गुण है आत्मा का, उसको हम कैसे जानेंगे?
हाँ, आत्मा का जो स्थिरता का गुण है उसका मतलब यह है कि भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है। वो चंचल तब होता है जब भगवान के चरणों को छोड़ता है, तब दर दर भी ढूंढने का अंदर भटकते रहता है। जैसे कोई अपना अपना घर है तो उसको घर से निकाल नहीं देगा, घर में आएगा आराम से देगा, फिर अपना घर छोड़ेगा और तुम्हारे घर में आएगा, इनके घर में आएगा, इनके घर में आएगा, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं तुम्हारा घर नहीं, बाहर गेट आउट, तो निकल जाएगा, तो वो अस्थिर हो जाएगा। जब वो अपने घर में जाएगा तो वो स्थिर हो जाएगा, और अपने घर जाने का मतलब क्या है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका कार्य करेगा, वो स्थिर हो जाएगा। हम सब लोग भी अस्थिर हैं इस दुनिया में, क्योंकि हम भगवान को छोड़ चुके हैं। हम उस बेवारिस बच्चे की तरह है, लावारिस बच्चे की तरह है, जो पिताजी को खो बैठा हुआ है, दर दर भटक भटक रहा है, लेकिन वो जब पिताजी को पहचान लेगा, उसके घर में जाएगा, एकदम स्थिर हो जाएगा, फिर उसके लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं। वो स्थिरता का मतलब है, वो स्थिर, हम लोग मूलतः स्थिर है, मूलतः भगवान के अंश, इसलिए हम स्थिर हैं, लेकिन अभी भगवान को छोड़कर भटक रहे हैं शरीर लेकर, तो अस्थिर नजर आ रहे हैं, लेकिन आत्मा स्थिर नहीं, आत्मा स्थिर है। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान की। आपका प्रश्न है, कुछ होता
मैं कौन हूँ ये हमेशा से प्रश्न बना रहा है।
हाँ,
मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रश्न हमेशा रहा है, लेकिन इसका आंसर कैसे मिलेगा?
इसका आंसर सिंपल है, मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवान की सेवा करना है, यही उसका उत्तर है, और कोई बड़ा पीएचडी का उत्तर नहीं है इसका, याद रखना। उसको बड़े कॉम्प्लिकेट भाषा में, संस्कृत में और क्लिष्ट भाषा में बताएंगे तो उसका उत्तर मिल गया, ऐसा नहीं है। उसका सिंपल सा उत्तर यही है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, मेरा हित उसी के अंदर है और मुझे अभी उस पर अमल करना है, केवल उस बात को दोहराते बैठना नहीं, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का अंश अगर मैं हूँ तो भगवान के अंश जैसा मुझे कार्य भी करना है तुरंत ही, बस सिंपल है। ऋषिकेना ऋषिकेश भक्ति उत्तम, इंद्रियों के स्वामी है, उनके अपने इंद्रियों की सेवा करनी है, तब जीवन में परिपूर्णता है, बस ऐसा होगा उसका उत्तर, और दोबारा कोई पूछना भी नहीं प्रश्न, यही उसका उत्तर है, यही रहेगा हमेशा के लिए, और करना भी वही है, आपको भी और मुझे भी वही करना है। ठीक है,
डिवोटी का प्रश्न है पीछे।
हाँ, मुझे ना
आपने बताया कि जो भक्तों का जागने का समय होता है, एक्सप्लेन करें,
जो भक्तों का जागने का समय होता है वो बाकी लोगों का सोने का समय होता है, जो भक्तों का सोने का समय होता है उनके जागने का समय होता है। इसका मतलब यह है कि जो पहला प्रहर है दिन का, तीन से छह बोलते हैं उसको, जिनके आठ प्रहर होते हैं, तो पहले प्रकरण के समय जो भोगी लोग होते हैं उसको दे रहे हैं, और उस प्रकरण के समय भक्त लोग उठकर जप करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते। और जब रात्रि के पहले प्रेयर यानी कि दूसरे प्रेयर 9 से 12 मतलब दिन के 7वें प्रेयर है ना, जब भक्त सोता है तो भोगी जगता है उस समय पूरा भोग लेने के लिए, फुल एक्टिव होकर वो भोग लेने में लिप्त रहता है। उस भोग लेने के समय पर भक्त जो है वो आराम करते रहते। याद रखना इस बात को कभी भी कि अगर आपको भोग से मुक्त होना है तो भोग का जो समय है उसमें आप सो जाइए। इसलिए कहा है जल्दी सोना, क्योंकि तो लेट सोएंगे तो समय के प्रभाव से भोग की इच्छाएं मन में प्रकट होगी। रात का समय जो है वो सेक्स के लिए, डकैती करने के लिए, रेप करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, ड्रग लेने के लिए प्रवृत्त करता है, गलत विचार मन में आते हैं समय के प्रभाव से। और सुबह के समय मन प्रसन्न रहता है तभी जगो और भगवान का नाम निर्मल समय पर उसका नाम ले लो। तो वो श्लोक है गीता में, तो मुझे बराबर याद नहीं आ रहा, उसका मतलब ये है कि जब भक्त सोता है तो दुनिया जाती है। हाँ हाँ, ज्ञान इच्छा सर्व होता है, जब उसकी निशा होती है तो इसका दिन होता है।
गलत काम होती क्या आत्मा दूषित होती है?
गलत काम क्या?
गलत काम होती क्या आत्मा दूषित होती है?
गलत काम होते कैसे? पहले गलत काम होते हैं, गलत काम करने की इच्छा करने से होते हैं। बिल्कुल होती है, क्योंकि इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं करता ना। पहले शुरुआत होती है इच्छा से, जब गलत इच्छा होती है वहीं से अशुद्धि शुरू होती है, और वो अशुद्धि फिर वाचा में से और फिर क्रिया में से प्रकट हो जाती है, और उसका फल मिलता है, और फल से भी और दूषित हो जाती है। इसलिए भक्ति की प्रक्रिया मतलब क्या है? भक्ति की प्रक्रिया का मतलब इच्छा को बदलना। अर्जुन की इच्छा थी कि खुद के लिए लड़े, उसकी इच्छा बदल गई और मैं मेरे लिए नहीं आपके लिए लड़ूंगा। यहां से शुरू होता है महाभारत का युद्ध, इतना बड़ा परिवर्तन। मैं को हटाकर भगवान को बिठा दिया और फिर महाभारत का युद्ध लड़ा उसने, तो उसका परिणाम अलग हो गया। इच्छा को सुधारना ही भक्ति है एक्चुअली। अपनी इच्छा को भगवत इच्छा से जोड़ देना, यह भक्ति का एकदम सिंपल फॉर्मूला है। सारांश सारांश, यीशु कृष्ण क्या बोलते हैं? दाई विल बी डन माय लॉर्ड, मतलब आपकी इच्छा ही होने दीजिए, मेरी इच्छा का परवाह मत कीजिए, मैं मेरी इच्छा को आपकी इच्छा जोड़ दूंगा, पर आपकी इच्छा होनी चाहिए। ईश्वर इच्छा बलियसी, आपकी इच्छा को मेरी इच्छा बनाना, यही भक्ति है। वो हमारी क्या कहते हैं, भगवान आपकी 75% मेरी 25%, आपकी 50 मेरी 50, ऐसा नहीं। भक्ति मतलब आपकी इच्छा 100%, मैं मेरी जो भी है आपके जोड़ दूंगा।
कई लोग पाप करते हैं और कहते हैं ये भगवान ने मुझसे कराया।
हम सब लोग जैसे भगवान, जैसे मैंने बताया पहले से कि हम लोग भगवान के अंश हैं, और भगवान का स्वभाव है अभिज्ञ स्वराट। उस स्वराट का मतलब है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है, भगवान पूरे स्वतंत्र है, किसी से निर्भर नहीं है, और वो आत्मनिर्भरता हमारे अंदर भी है, हम भी इंडिपेंडेंट है। और भगवान उस इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को हमसे छीनना नहीं चाहते, क्योंकि उससे इंडिपेंडेंट देने से हम प्रेम कर सकते। प्रेम कोई जबरदस्ती या मशीन से सॉफ्टवेयर से नहीं होता ना। प्रेम तो सॉफ्टवेयर है यार, बाजार में प्रेम का सॉफ्टवेयर और लगा दे एकदम प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ऐसा है क्या? कोई नहीं, प्रेम जो है ना वो हृदय से इच्छा से होता है। तो इच्छा से ही व्यक्ति पाप करता है। जैसे आपके घर बच्चा है, वो बोल रहे पापा मुझे आपको हाथ लगाना है, तो आपके बोलने मत लगा, जल जाएगा आपको, नहीं नहीं लगाना है मुझे, आप होली लग होली का उत्सव चल रहा है, मुझे हाथ लगा के देखना क्या होता है। तो आखिरकार क्या करेंगे? बहुत जिद करेगा ना, तो उसको आप पकड़ लेके जाएंगे, उसका उंगली पकड़ के और उसको आगे लेके जाएंगे और एक चक्का लगाएंगे उसको, तो वो वैसा डर जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको हाथ भी जला रहे, उसको आप बता रहे हैं कि कैसे ही जलेगा, दुख कैसे होगा, बाद में समझा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पापा ने मुझे कूद जाके हाथ को हाथ लगाने की परमिशन दिया, ऐसा है क्या उसका मतलब? जैसे कोई एक डॉक्टर हमारे पास पेशेंट से हमारा आएगा और 50 सिगरेट पी रहा है, तो हमने बोला सिगरेट पीना छोड़ दो, इम्पॉसिबल, छोड़ नहीं सकता मैं। तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम करो, कल से 45 पियो, तो वो जाके दुनिया को बताएगा डॉक्टर ने मुझे 45 पीने का परमिशन दे दिया, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, वो 45 पीने का परमिशन देता है। लेकिन मेरा हेतु क्या है उसके अंदर? आपको कम कर करके इन जिलों में लाना है मुझे। आप बीच का इंस्ट्रक्शन पकड़ के बैठोगे और प्रकाशित करोगे टीवी पर उसको कि ये डॉक्टर ने 45 सिगरेट देने का परमिशन दे दिया, तो वो परमिशन नहीं है, वो पेशेंट की गिरी हुई स्थिति के अनुसार दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है। वैसे ही मोहम्मद ने सबको बताया कि आप 4 पत्नियां रख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दिन भर भोग करो। उस जमाने में जब वो वहां पर थे तो इतने लोग गिर चुके थे कि वो माता बहन और पुत्री के साथ भी सेक्स करते थे, तो उन्होंने उनको उस तरह से उठाकर 4 पत्नियों का परमिशन दे दिया, कम से कम 4 पत्नी रखो लेकिन माता बहन और पुत्री के साथ में सेक्स मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद पैगंबर वो उसके प्रचारक थे, वो एक स्थिति से दूसरे में ला रहे लोगों, फिर और आगे ला रहे, फिर और आगे ला रहे, फिर उनको बेस्ट नॉलेज भी देने वाले। उस तरह से पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो हमारे अंदर है, अगर हम नहीं मानते हो तो जला लो अपना हाथ, फिर बैठो ऐसे ही, फिर फल भोगो उसका। तो ये सब जो है ना, ये सब पाखंड है कि हम करते हैं पाप और बोलते हैं उसने करवाया। देखो हमने पढ़ा है शास्त्र में कि प्रण का पत्ता भी उसकी इच्छा से नहीं हिलता है, तो मेरे हाथ से पाप कैसे होगा इसकी इच्छा के बिना। ये सब जो है ना, ये प्रभुपाद जी उसको कहते रास्कल बोलते थे, अप्रामाणिकता बोलते हैं इसको। अप्रामाणिक जो होता है ना, जो जो व्यक्ति सही उसका हृदय नहीं है, उसका लक्षण नहीं है। तो हमको सब ऐसे लोगों से कोई टाइम पास नहीं करना चाहिए जो लोगों को पाप कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमको एक हम व्यक्ति को जानते हैं जो रोज रात को शराब की बोतल के ग्लास के ऊपर तुलसी रख के भगवान को अर्पण करके शराब पीता है। जानता हूं व्यक्ति, मतलब कितना वो व्यक्ति, क्या कहूं उसको मैं, यहां बैठे क्या बोल सकता हूं उसको। हमें ऐसा सोचने वाला आदमी कैसा हो सकता है, आई डोंट नो हाउ वी कैन थिंक लाइक दिस, बट ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या करें उसको। इसलिए हमको इस दुनिया में ज्यादा देर रुकना नहीं है, तुरंत अपना बाढ़ बिस्तर बांधो और बाग भगवान के गांव में। गलती से यहां पर गिर गए, कितना आपका किराए का शरीर है, तब तक रहो यहां पर, तुरंत निकलो यार। जब यहां का किराया खत्म हो जाएगा ना, उसके पहले ही वहां जाने की योग्यता बना के रखो। ठीक है, जय जय श्री राधे, थैंक यू वेरी मच, हरि ओम।